मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 29 मार्च 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं आकांक्षा चंद्रा, आप सुपौल बिहार से हैं, तुषार गुप्ता आप सांबा जम्मू कश्मीर से हैं और राजप्रिया आप हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं। तो आकांक्षा, तुषार और राजप्रिया आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों आज कुछ सूचनाएं हैं। एक तो सूचना यह है कि दो दिन पहले YouTube पर एक प्रोग्राम मेरा डाला गया है कि आप IAS के लिए अपने आप को कैसे तैयार करेंगे, वो खासकर बदलाव के ऊपर है और हो सकता है कि उस YouTube के प्रोग्राम को आपने ऑलरेडी देखा हुआ हो और अगर नहीं देखा हो मित्रों तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इसे एक बार जरूर देखें। मैं अक्सर डेली ऑडियो लेक्चर में और डेली ऑडियो लेक्चर में तो शायद कभी कभी ही होता होगा, लेकिन जो 15 दिन की क्लासेस होती हैं अपने स्टूडेंट्स को लगातार इसकी याद दिलाता रहता हूं या यूं कह लीजिए कि उनके दिमाग में इस सच्चाई को भरने की कोशिश करता रहता हूं कि देखिए अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे और ये छोटे मोटे बदलाव नहीं बहुत बड़े बदलाव लाने पड़ेंगे। ये मैं बार बार उन्हें बताने की कोशिश करता हूं और सच पूछिए तो ये 15 दिन की जो क्लासेज होती हैं वो बदलाव लाने की ही क्लासेज होती हैं, तो उन्हें तो शायद इस बात का ज्ञान हो गया होगा, लेकिन और जो स्टूडेंट जो डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से मुझे सुनते हैं, जानते हैं या पुस्तक के माध्यम से पढ़ते हैं उन्हें मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि इस YouTube के प्रोग्राम को आप जरूर देखें और यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों को भी उसे फॉरवर्ड करें, उसे भेजें, क्योंकि ये जो बदलाव है ऐसा नहीं कि केवल सिविल सर्वेंट बनने के लिए ही जरूरी है। अभी आप जो कुछ भी हैं हैं, अगर आप इसमें से कुछ और बनना चाह रहे हैं इसका मतलब है कि आप अपने को बदलना चाह रहे हैं, अपनी स्थिति में बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि जब तक आप खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक स्थितियों में बदलाव नहीं आएगा। इस आप कह लीजिए कि थ्योरी को मैंने इसमें एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, शायद आपको अच्छा भी लगेगा। मित्रों जो दूसरी सूचना है वो ये है कि कल शनिवार और नेक्स्ट डे रविवार दो दिन डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है आप जानते हैं, लेकिन कल आपको प्रेस क्लिपिंग्स बकायदे पढ़ने को मिलेंगी, साथ ही साथ योजना के दो आर्टिकल और कुरुक्षेत्र के दो आर्टिकल, टोटल चार आर्टिकल हिंदी और इंग्लिश के मिलाकर के वो आपको पढ़ने को मिलते हैं। एक वीकली क्वेश्चन भी होता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। ये हर शुक्रवार की सूचनाएं होती हैं जो मैंने आपको दी हैं। आज के मुख्य विषय के रूप में मित्रों आपसे मैं दल बदल कानून के बारे में थोड़ी बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। और आज मैं जिन खबरों की चर्चा करने जा रहा हूं वो सीधे सीधे न्यूज में नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में जानना चाहिए भले ही वो इनडायरेक्ट तरीके से ही न्यूज में क्यों ना आई हो। मित्रों अभी आप घोषणा पत्र का नाम सुन रहे हैं, मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो। जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वो अपने अपने घोषणा पत्र जारी करती हैं। कुछ समय पहले बीजेपी ने जारी किया, कांग्रेस ने जारी किया, कल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जारी किया, तो हर पार्टी अपने अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं। बेसिकली ये मैनिफेस्टो है क्या? देखिए जो मैनिफेस्टो है ये जनता के द्वारा राजनीतिक दलों का किया गया एक वायदा है। ये बात अलग है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लोकतांत्रिक पद्धति में कि जब हम चुनाव में अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों को भी घोषणा पत्र की जानकारी नहीं होती है, घोषणा पत्र की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि जो मतदान का जो हमारा आधार है वो बहुत ही अलग है। कहीं वो जाति के आधार पर है, कहीं परिचय के आधार पर है, कहीं धर्म के आधार पर है, कहीं सीधे सीधे राजनीतिक दल के आधार पर है कि हम तो भैया इसी पार्टी को वोट देंगे चाहे वो फिर जैसी भी हो। तो ये सही मायने में एक मेच्योर लोकतंत्र जिसे प्रौढ़ लोकतांत्रिक चिंतन कहेंगे उसका प्रमाण नहीं है। हमारा जो आधार होना चाहिए वो घोषणा पत्र होने चाहिए कि जनता से क्या वायदा किए जा रहे हैं, और अगर हमारे वो वायदे, हम उन वायदों से संतुष्ट नहीं है लेकिन हमें लगता है कि राजनीतिक पार्टी हमारे काम की है, तो हमें उन्हें हम उन्हें बताएं कि नहीं, आप इनमें ये वायदे भी शामिल कीजिए। आमतौर पर आप पाएंगे कि जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी कि हम गरीब वर्ग के 20% लोगों को 72,000 रुपये सालाना देंगे, तो ये एक घोषणा हो गई, ठीक है, ये एक घोषणा हो गई। दूसरा, हम शिक्षा पर इतना प्रतिशत व्यय करेंगे, हेल्थ पर इतना प्रतिशत व्यय करेंगे, ये डेफिनेटली चुनावी घोषणाएं ही हैं, लेकिन घोषणा पत्र हम सब नहीं पढ़ते और सच पूछे तो अवेलेबल भी नहीं कराए जाते, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए आप ये कह लीजिए कि इंजन है। लोकतंत्र राजनीतिक दलों के माध्यम से ही गति पकड़ता है, काम करता है, और जो राजनीतिक दल चुनकर आते हैं उनका जो वायदा होता है वो घोषणा पत्र होता है, और जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि जनता से जो उन्होंने वायदे किए हैं उन वायदों को वे पूरा करें, और इसी के लिए जनता उन्हें समर्थन भी देती है। तो घोषणा पत्र बहुत इंपॉर्टेंट, आप कह लीजिए कि डॉक्यूमेंट होता है। फ्रेंड्स, आप अक्सर अभी आपको अखबारों में एक शब्द पढ़ने को मिलता होगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल। बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है कि पॉलिटिकल विल को समझ नहीं पाते कि भाई ये है क्या। देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति का मतलब है कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं, और खासकर इसका इस्तेमाल किया जाता है उस पार्टी के लिए जो सत्ता में है, क्योंकि सत्ता में अगर कोई पार्टी है तो स्वाभाविक है कि अगर वो कोई चाह ले कि मुझे यह करना है तो उसे वो कर सकती है, क्योंकि उसके पास अधिकार है, कानून बनाने के अधिकार हैं, उसके पास संसाधन है, उसके पास धन भी है, और उसके पास प्रशासन भी है, ये तीनों चीजें उसके पास हैं। तो आप देखेंगे कि अक्सर इस्तेमाल होता है कि राजनीतिक शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, यानी कि ठीक है जनता से वो कह भी देते हैं क्योंकि उन्हें जरूरी लगता है कि हां ये किया जाना चाहिए, लेकिन उसको करने के लिए जो ठोस जो इच्छा होनी चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी बहुत सी वजह हो सकती है, जैसे गरीबी की बात अभी की जा रही है। आप देखिए कि गरीबी हटाओ, 1971 में कांग्रेस पार्टी में जब इंदिरा जी थी तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा ही दिया और उस पर वो बहुत अधिक स्थानों से जीत करके भी आई, लोकसभा में कांग्रेस को बहुत अधिक स्थान मिले। उसके बाद से, सन 1971 के बाद से आज हम 2019 में हैं, लगभग आप देखिए कि 50 साल पूरे हो गए, अभी भी बात गरीबी की ही की जा रही है। आपको क्या लगता है कि सच में गरीबी हटाना इतना मुश्किल काम है? तो यहां पर फिर आपको पढ़ने को मिलता है कि इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि शायद किसी वजह से पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाह रही है कि गरीबी खत्म हो, और इनका जायजा ले पाना, इन तथ्यों को पकड़ पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी जो कह रही है वो चाहती ही है, और अगर वो चाहती है तो मान करके चलिए कि वो चीज हो सकती है, हो जाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो इसे कहते हैं दोस्तों हम पॉलिटिकल विल। फ्रेंड्स, एक न्यूजीलैंड के बारे में खबर छपी है। न्यूजीलैंड में आपने देखा कि अभी जो आतंकवादी हमला हुआ, कि न्यूजीलैंड सरकार ने अब अपने यहां हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, हथियार। अदरवाइज ज्यादातर आपको डेवलप्ड कंट्री में मिलेंगे कि हथियार के लाइसेंस आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं, और अमेरिका तो इस संकट से बहुत ज्यादा ग्रस्त है। न्यूजीलैंड में सभी पार्टियों ने मिलकर के इसका समर्थन किया कि नहीं, हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाया जाए, कुछ मामलों में छूट भी दी गई है। यह उदाहरण इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, न्यूजीलैंड में एक घटना घटी और उस घटना के घटने के बाद से कैसे सारी राजनीतिक पार्टियां अपने राष्ट्रीय हित के लिए बिल्कुल एक हो गई और वो कानून पारित हो गया। अमेरिका में ऐसा नहीं हो सका। अमेरिका में आए दिन आप सुनते हैं स्कूलों में ये कोई गया आदमी और या स्कूल का बच्चे स्टूडेंट ही धनाधन गोली चलाकर के 30-40 लोगों की हत्या कर दी इस तरह, और वहां कोशिश की गई थी, अब ओबामा साहब ने की थी जब राष्ट्रपति थे, कि हथियार रखने पर प्रतिबंध संबंधी कानून पारित हो, लेकिन वो पारित नहीं हो सका था क्योंकि जो हथियार बनाने वाली लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है कि उसको लगता है कि हमारा तो व्यापार ही चौपट हो जाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड ने इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया है जिसका आप इस्तेमाल कंटेंट के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों, आज के करंट कंटेंट के तहत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाला गया है और वो है अनुच्छेद 370 और 35A, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके ऊपर आर्टिकल डाला गया है, और प्लीज इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से। और स्पेशली फिर से मैं रिपीट करूंगा, यदि आपको यह संभावना लगती है कि सितंबर के मेंस में आप अपीयर होने जा रहे हैं तो राइट। फ्रेंड्स, अब मैं आज के दल बदल विरोधी कानून पर थोड़ी सी बात करता हूं, वक्त बहुत कम बचा है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग बहुत तेजी के साथ अपने दलों में बदलाव कर रहे हैं। ये तो चलिए चुनाव से पूर्व है तो दल बदल कानून इस पर लागू नहीं होता। चुनाव से पहले आप कितने भी पार्टी बदलिए, आपकी मर्जी है, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर यह दल बदल कानून लागू नहीं होता है। दल बदल विरोधी कानून लागू तब होता है जब आप जीत कर या तो विधानसभा में पहुंच जाते हैं या लोकसभा में पहुंच जाते हैं, तब यह दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। सन 1980 में हरियाणा विधानसभा में एक घटना घटित हुई थी, शायद उस समय भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने थे, कि पूरी की पूरी सरकार ही उसका बहुत बड़ा हिस्सा दल बदल करके सरकार उसने बना लिया था। तो उस समय आया राम गया राम का नारा बहुत चर्चित हुआ था और तब पूरा देश चौकन्ना हो गया कि अरे बाप रे, इसका मतलब है कि इस तरह से दल बदल होने पर तो सरकार एकदम अस्थिर हो जाएगी कि कौन सी पार्टी की सरकार कब है। रातों रात पता लगा कि वो सुबह जब उठ रहे हैं तो उसका चेहरा बदला हुआ है, दूसरी राजनीतिक पार्टी हो गई है, तब लोग थोड़ा सा चौंके। उस दल बदल का बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था, नैतिकता के स्तर पर भी सवाल उठे थे। तो बाद में फिर सरकार 1985 में जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे तब संविधान 52वां संशोधन लाया गया और उसके आधार पर दल बदल विरोधी कानून बनाया गया और बकायदे संविधान में इससे संबंधित एक 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। यह फैक्ट आपके प्री एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उस कानून में देखिए जो व्यवस्था की गई है वो ये है कि कोई भी पार्टी का सदस्य यदि पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करके मतदान करता है तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब पार्टी उस विधेयक के बारे में, उस बिल के बारे में जो निर्णय दे रही है, आपको उसे मानना पड़ेगा। यहां तक कि अगर आप मतदान में भाग नहीं लेते हैं जबकि पार्टी ने कहा है कि आपको मतदान करना है, तब भी आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। नंबर टू, यदि कोई निर्दलीय सदस्य, आप देखते हैं कि निर्दलीय सदस्य बहुत से होते हैं, निर्दलीय सदस्य यदि चुनाव के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए तब भी वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। आप इंडिपेंडेंट लड़े हैं, इंडिपेंडेंट ही सदन में आप रहिए। हाँ, अगर कोई राजनीतिक दल के जितने भी सदस्य हैं, विधानसभा हो या लोकसभा हो, यदि उसके एक तिहाई सदस्य उससे अलग हो जाते हैं, एक तिहाई से अगर कम अलग होते हैं तो वो अयोग्य माने जाएंगे। अगर वो एक तिहाई से या उससे अधिक है तो बकायदे वो जिस पार्टी में भी शामिल होंगे या नई पार्टी बनाना चाह रहे हैं तो उन्हें मान्यता मिल जाएगी, लेकिन एक तिहाई से अगर कम हुए तो वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। अभी आपने देखा परसों गोवा विधानसभा में हुआ कि महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के टोटल 3 सदस्य थे, उसमें से 2 सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया गया, बकायदे वहां उन्हें मान्यता मिल गई। ठीक इसी तरीके से मित्र, जो सदन में जो नामांकित सदस्य होते हैं, नामांकित सदस्य यदि 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे भी अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये कुछ उसके लिए प्रावधान किए गए हैं ताकि जो दल बदल विरोध की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम हो, और निश्चित रूप से इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट भारतीय राजनीति पर इस मायने में हुआ है कि अब सरकार की स्थिरता थोड़ी सी सुनिश्चित हो गई है। यानी कि सरकार बन जाने के बाद आप कुछ समय तक भरोसा कर सकते हैं कि यह बनी ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सदस्य पार्टी छोड़ दे और दूसरे में जाकर के शामिल हो जाए और पता लगा कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो अल्पमत में आ गई और सरकार चली गई। तो ये इसका इतना लाभ तो हुआ है, और सच पूछे तो इसके माध्यम से ये भी कहा जाता है कि भ्रष्टाचार पर भी थोड़ा सा नियंत्रण लगा है, क्योंकि जो पार्टी के जो मेंबर होते थे, पता लगा कि दूसरे दल को 2-4 मेंबर की जरूरत है और वो कुछ भी रकम देकर के उन्हें खरीदने को तैयार हो जाते थे, जैसे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। और पार्टी के जो मेंबर होते थे उनको भी लगता था यार कि चलो इतना सारा पैसा मिल रहा है, अगला चुनाव किसने देखा है, अपना इसका फायदा लो और किनारे हो जाओ। तो उस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप यूं कह लीजिए कि प्रतिबंध तो लगा ही है। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है कि दल बदल विरोधी कानून जो बना उससे सब कुछ अच्छा ही हुआ है या इसकी केवल प्रशंसा ही की जा रही है। इसके बहुत से आलोचना के बिंदु भी होते हैं जिनकी चर्चा करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं रह गया है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को आपको जरूर अपने स्तर पर तैयार करना चाहिए। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं लखन सिंह, किंशुक नागर, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, मनु निशाकर त्यागी, चंद्रकांत पाटले, मनीषा सैनी और मोहम्मद नासिर फैजाबाद से, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, दो दिनों के बाद अब आप सबसे मुलाकात होगी, तो इन दो दिनों के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।